ஓம் சாந்தி. आज की मुरली में बाबा ने हमको एकांत का अर्थ और महत्व समझाया. तो एकांत का अर्थ है, बाबा ने कहा, एक की याद में अंत हो, यानी अंत में और किसी की याद ना आए. कई बार बाबा पहले मुरलियों में कहते हैं एक के अंत में खो जाना, वो एकांत है, यानी एक की लगन में मगन हो जाना, एक के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए. आज उसी बात को बाबा ने थोड़े अलग तरीके से कहा, अंत समय के लिए हमारा ये पुरुषार्थ होना चाहिए. तो बाबा का विशेष इशारा था कि हमें अपने साइलेंस पावर को, शांति की शक्ति को बढ़ाते जाना है. और बाबा ने ये भी कहा आज कि विशेष टाइम निकालना है, घर में भी एक विशेष स्थान हो आपके पास. घर में, घर का वातावरण ऐसा होता है जहां हम एकांत का अभ्यास नहीं कर सकते, तो हम अपना कोई ऐसा स्थान, और नहीं तो फिर समझिए जहां हमारा मन एकाग्र हो सकता है, एकांत का अनुभव कर सकता है, वो स्थान, वो समय हम अपने लिए निश्चित करें. लेकिन ये अभ्यास करना बहुत बहुत जरूरी है वर्तमान समय के अनुसार. उसका कारण है, बाबा कहता है कि समय इशारा दे रहा है हमको, बहुत तीव्र गति से हम अंत समय की ओर बढ़ रहे हैं. और यदि हमारा अभी से अभ्यास होगा तब हम अंत में उस स्थिति का अनुभव कर सकेंगे जो बाबा हमें अभी से कहते हैं. साइलेंस की शक्ति का अर्थ है एक सेकंड में शरीर से न्यारे हो जाना, जो आज भी बाबा ने कहा कि ऐसा अनुभव करें आत्मा बिल्कुल शरीर से अलग है, जीते जी मरना जिसको बाबा ने कहा. हम सभी बाबा के बच्चे मजीवा जन्म वाले हैं और हमें ये अभ्यास बढ़ाते जाना है. देह अभिमान से देही अभिमानी स्थिति में हमारी स्मृति बढ़ती जाए. अभी ऐसा होता है योग में बैठे तो थोड़ा आत्मा समझा अपने आप को, थोड़ा सा दिन भर में कहां कभी याद आ गया, लेकिन बाकी सारा टाइम हम भूले रहते हैं मैं आत्मा हूं. और केवल ये याद नहीं रखना है मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं ये भी हमें स्मृति में रखना है. तो मुझे याद है कि जो हमारा हर घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास चालू हुआ, बाबा ने एक बार विशेष कहा था मुरली में, तब बड़ी दादी जी थे, दादी प्रकाश मणि, तब बाबा ने कहा था हर घंटे में कम से कम 10 मिनट निराकारी स्थिति या अशरीरी स्थिति का अभ्यास होना चाहिए. और बाबा ने उसका पूरा महत्व समझाया था. अशरीरी स्थिति का अभ्यास माना मैं आत्मा इस शरीर की कर्मेंद्रियों से बिल्कुल अलग हूं, परम धाम की रहने वाली हूं, मन बिल्कुल परम धाम में, शांति धाम में कुछ समय के लिए स्थित हो जाए. तो फिर बड़ी दादी जी ने ये हर घंटे में, चलो 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कम से कम 2 मिनट भी हम उस स्थिति का अनुभव करें. और उसके पहले 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं. तो ट्रैफिक कंट्रोल माना मन स्टॉप हो जाए, उसका ही अभ्यास करना है. पर क्या सचमुच हमारा मन स्टॉप होता है? सारी बातों से मन निकलकर हम जो भी कर रहे हैं बाबा की याद में स्थित हो जाए। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। स्टॉप कहां माना, स्टॉप जिस तरफ मन को मोड़ना चाहे उस तरफ मेरा मन सहज मुड़ जाए, और अगर नहीं होता है इसका मतलब अभी तक मेरे मन के ऊपर मेरी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। और इसीलिए योग में भी हमारी पावरफुल स्थिति नहीं बनती है। अगर हमें अशरीरी स्थिति का अभ्यास नहीं है, आज की मुरली में भी बाबा ने कहा विकर्म विनाश करने वाली याद कौन सी है, पावरफुल याद। तो अगर मेरी अशरीरी स्थिति नहीं है तो योग में मेरी पावरफुल स्थिति नहीं बन पाती है, क्योंकि मन व्यर्थ संकल्पों से, देह अभिमान माना व्यर्थ संकल्प पैदा कर रहा है मन, चाहे अपने बारे में, चाहे दूसरों के बारे में, चाहे परिस्थितियों के बारे में, कोई ना कोई प्रकार के व्यर्थ संकल्प मन में होते हैं। उन व्यर्थ संकल्पों से मन मुक्त होकर के बाबा की याद में स्थिर हो जाए उसमें मेहनत लगती है, युद्ध करना पड़ता है, तो वो साधारण याद रह जाती है। जो ज्वालामुखी योग की स्थिति बनाने के लिए बाबा कहता है वो योग की स्थिति नहीं बन पाती। और जब तक वो योग अग्नि नहीं है तब तक विकर्म विनाश नहीं हो सकते। तो अशरीरी स्थिति हमें मदद करती है बाबा की याद में लगन में मगन होने की, क्योंकि आत्मिक स्थिति बाप समान स्थिति है। शिव बाबा निराकार है, तुरंत हमारा कनेक्शन हो जाता है बाबा के साथ। जैसे हम कहते हैं आत्मा समझते हैं तो परमात्मा सहज याद आता है। जैसे कोई अगर अपने आप को टीचर समझता है तो उसे स्टूडेंट याद आते हैं, क्योंकि टीचर का कनेक्शन स्टूडेंट के साथ है। अगर कोई अपने आप को बिजनेसमैन समझता है तो उसे ग्राहक याद आते हैं, क्योंकि उसका कनेक्शन ग्राहक के साथ है। अगर कोई डॉक्टर समझता है तो उसे पेशेंट याद आते हैं, माँ को बच्चे याद आते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ऐसे ही जब आत्मिक स्मृति है तो बाबा की स्मृति सहज हो जाती है। और हम योग में कहते हैं कि हमारी फ्रिक्वेंसी तब मैच होती है जब हमारी निराकारी स्थिति हो। तो बाबा की शक्तियों का वो अनुभव हमें बहुत सहज होने लगता है। तो साइलेंस पावर माना, जब हम उस पावरफुल स्थिति का अनुभव करते हैं तो हम वाइब्रेशंस वायुमंडल जो हमारे आसपास का है उसमें भी शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं। आजकल बाबा हमें कहते हैं कि हमारी सेवा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाली होनी चाहिए, और जब हमारी योग की पावरफुल स्थिति होगी तो ही हमारे घर का, हमारे सेवा केंद्र का वायुमंडल पावरफुल होगा। फिर बाबा कहता है कि वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन करने की सेवा करो। तो अगर मेरी अशरीरी स्थिति है, आत्मिक स्थिति है, तो अशरीरी स्थिति में आत्मा के गुण इमर्ज होते हैं। आत्मा के गुण क्या हैं? आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, हम सभी जानते हैं। आत्मा शक्ति स्वरूप है, लेकिन वो इमर्ज रूप में हो। आत्मा अपने अनादि स्वरूप में पवित्र है, तो आत्मा की दृष्टि वृत्ति पवित्र दृष्टि वृत्ति है। तो यदि हम दूसरे को भी देखते हैं आत्मा के रूप से ही, अगर मैं देख रही हूं तो मेरी दृष्टि वृत्ति कैसी होगी? कैसी होगी? पवित्र दृष्टि वृत्ति होगी। तो वो आत्मा को भी मेरी वृत्ति से वो अनुभव होगा, रूहानियत अनुभव होगी, वो वाइब्रेशन उसको अनुभव होगा। बाबा कई बार कहता है आप अपनी चलन और चेहरे से सेवा करो। तो कौन सी चलन और कौन सा चेहरा? जब हमारी रूहानियत वाली या आत्मिक दृष्टि वृत्ति है तो वो चेहरा अन्य आत्माओं को भी वो शांति के वाइब्रेशन देता है, वो शक्ति के वाइब्रेशंस देता है, वो पवित्रता के वाइब्रेशंस देता है जो आत्माओं को स्वतः अनुभव होते हैं। कई बार वो ज्ञान नहीं समझते हैं लेकिन आपके वाइब्रेशंस उनकी सेवा करते हैं, जिसको बाबा कहता है वृत्ति से वृत्ति को परिवर्तन करने की सेवा। और वो तब हम कर पाएंगे जब हमारी अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ता जाए। दूसरा फायदा हमें ये होता है कि जो बाहर के वायुमंडल के तमोगुणी वाइब्रेशंस हैं, आजकल हम सभी कलयुगी वातावरण में रहते हैं, हम सभी तमोगुणी आत्माओं के संपर्क में आते हैं, हमारे खुद के भी तमोगुण के संस्कार अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं, कोई ना कोई विकार के बाबा कहता है रावण के पुराने संस्कार समय प्रति समय इमर्ज हो जाते हैं। तो ऐसे संस्कारों का यानी अपने संस्कारों का भी हम परिवर्तन कर सकेंगे, जिसे बाबा कहता है स्व परिवर्तन की शक्ति, वो आत्मा के अंदर आ जाती है, परखने की शक्ति, माया के रॉयल रूपों को परखने की शक्ति आ जाती है। माया भी रूप बदल बदल करके आती है। और दूसरा, जो दूसरी आत्माओं के वाइब्रेशंस हैं, संस्कार का प्रभाव है, वो हमारे ऊपर कम पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उनके वाइब्रेशंस को भी परख लेते हैं और हमारे अंदर उतनी शक्ति है कि हम अपने पवित्रता के वाइब्रेशंस से उनके वाइब्रेशंस को चेंज कर सके। कर सकते नहीं कर सकते, हम अपनी वृत्ति और वाइब्रेशंस के द्वारा अगर कोई तमो गुणी वाइब्रेशंस वाली आत्मा मेरे संपर्क में आ रही है तो हम उसके वाइब्रेशंस को चेंज कर सकते नहीं कर सकते, क्या कहेंगे? कर सकते हैं ना, क्योंकि बाबा ने हमें मास्टर बाबा पतित्तों को पावन बनाने वाला है, तो हम भी बाबा के साथ विश्व परिवर्तक हैं। बाबा कहता है आप प्रकृति को भी पावन बनाने वाली आत्माएं हो, तो क्या आत्माओं को पावन नहीं बना सकते? तो वो मुझे अपना कर्तव्य स्मृति में रखना होगा, लेकिन वो पावर मेरे अंदर तब आएगी जब मेरी आत्मिक स्थिति होगी। और इसलिए हर मुरली में बाबा कहता है कैसे स्थित होकर बैठो, आत्मिक स्थिति में बैठो। आप यहां बैठे हो बाबा की याद में, तो मैं आत्मा बाबा के सामने बैठी हूं, मैं आत्मा ये मुरली अपने कानों के द्वारा सुन रही हूं। और इसीलिए बाबा ने आज एकांत की बात कही कि विशेष समय निकाल करके भी इसका अभ्यास करो। कई भाई बहने कहते हैं हम बहुत बिजी रहते हैं, ब्राह्मणों की जिंदगी भी कई बार देखने में कैसे आती है, भागदौड़ की जिंदगी, जैसे दुनिया वालों की भागदौड़ की जिंदगी है, टाइम ही नहीं मिलता है, फुर्सत ही नहीं है। कई बार ऐसे ही छोटी छोटी बातों में हम यूं ही समय गंवा देते हैं, अपने पुरुषार्थ के लिए हमें टेंशन नहीं। आज बाबा ने माताओं को खास बोला कि माताओं को तो दिन के समय क्या होता है, फुर्सत मिलती है नहीं मिलती है? हाँ, फुर्सत मिलती है। तो अगर अटेंशन है स्व पुरुषार्थ के ऊपर तो जरूर हम वो अभ्यास करेंगे और अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाएंगे। ये अंतर्मुक्ता का अभ्यास है, जिसको बाबा कहता है अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाना, आत्मिक स्थिति में स्थित होना माना, अंतर्मुक्ता की गुफा में तपस्या करना, और अंतर्मुखी सदा सुखी ऐसे कहेंगे। वो स्थिति का अनुभव होता है जो अतीन्द्रिय सुख, बाबा ने कहा आज अतीन्द्रिय सुख, ये सारी आज की मुरली के मनन चिंतन की बात कहेंगे कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछो, मुरली में था ना। तो हम बाबा के बच्चे जो गोप गोपियां कहलाते हैं वो सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारा ये अभ्यास है। आत्मिक सुख का अनुभव क्या होता है, ईश्वरीय सुख का अनुभव क्या होता है, परमात्मा सुख का अनुभव क्या होता है, वो सुख हम बाबा के बच्चे अनुभव करते हैं। लेकिन कब अनुभव करेंगे? जब उस आत्मिक स्थिति में हम मन को ले जाएंगे। और केवल आत्मिक स्थिति नहीं, लेकिन बाबा कहता है मन को जहां चाहे, जब चाहे, जितना समय चाहे हम स्थित कर पाए, ये अभ्यास चाहिए। कई बार हम आत्मिक स्थिति का अनुभव कर लेते हैं लेकिन ज्यादा समय नहीं टिक पाते। इसको रूहानी ड्रिल कहेंगे। जैसे दुनिया में भी अगर हमें हेल्दी रहना है तो डॉक्टर कहते हैं एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, और उसके लिए टाइम देना पड़ता है, आधे घंटे का टाइम रोज निकालना है, एक्सरसाइज करना है। आजकल लोग प्राणायाम भी करते हैं कितने तरह के। तो ऐसे ही मेरे मन को स्वस्थ रखना है, जब चाहे मेरा मन उस स्थिति में स्थित हो जाए, उसके लिए रोज ये ड्रिल माना अभ्यास, एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज है वो हमें करनी होगी। जब चाहे मैं परम धाम में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाऊं, जब चाहूं मैं लाइट हाउस, माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाऊं, जब चाहूं मैं अव्यक्त फरिश्ता बनकर बाबा के साथ विश्व सेवा में प्रस्तुत हो सकती हूं, जब चाहे हम बाबा के साथ जो संबंध का अनुभव करना चाहते हैं, ये योग की अलग अलग स्टेजेस हैं, उस संबंध का मैं बाबा के साथ अनुभव करूं। तो अगर मैं परम धाम में बाबा के साथ 10 मिनट 15 मिनट स्थित होना चाहती हूं, पूरा मेरा मन पूरी तरह से परम धाम में है, तो क्या मैं स्थित हो सकती हूं? या एक मिनट परम धाम में रहेगा मन और दूसरे मिनट नीचे आ जाएगा। फिर मैं सोचती हूं कि मेरे को तो परम धाम में बाबा के साथ अनुभव करना था, मैं नीचे आ गई, फिर मैं ऊपर गई। ऊपर जाने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है? एक सेकेंड। तीनों लोकों में हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। तो बाबा कहता है बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, थक जाएंगे और फिर छोड़ देंगे। तो अभी अभी वो ड्रिल करें, हाँ, कि हम बाबा के पास चलो 10 मिनट नहीं, 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 2 मिनट, हाँ, घड़ी से बिल्कुल अशरीरी स्थिति में बाबा के समान। कई बार अव्यक्त बाप दादा भी हमको ये ड्रिल कराते हैं, तो हमें खुद को, अपने आप को ये ड्रिल बीच बीच में करानी चाहिए कि क्या मैं बिल्कुल उस स्थिति में, आप देखो मेरी अनादि स्थिति है, संपूर्ण पवित्र स्थिति है, सतो प्रधान स्थिति है। परम धाम में मुझ आत्मा का स्वरूप क्या है? संपूर्ण पवित्र सतो प्रधान सर्वगुण संपन्न मैं आत्मा बाबा के साथ हूं। तो चलेंगे परम धाम में बिल्कुल बाबा के साथ 2 मिनट। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा की किरणों के नीचे की छत्र छाया का अनुभव कर रही हूँ। संपूर्ण शांति का अनुभव मुक्ति की स्थिति का अनुभव। न्यारापन, मैं अनुभव कर रही हूँ। देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, सभी से पार, बिंदु रूप स्थिति, संपूर्ण पवित्र स्थिति, मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। बाबा कई बार हमें इस बात का इशारा देते हैं कि हमें मनसा सेवा के अभ्यास को बढ़ाते जाना है, और ये सूक्ष्म सेवा है। जैसे साइंस बहुत रिफाइन होती जा रही है, हर कार्य को बहुत कम समय में साइंस के साधन संपन्न करते हैं। स्विच ऑन करो और ऑफ करो, इतना ही होता है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, अंधकार खत्म, कितना टाइम लगता है स्विच ऑन करने में। तो ऐसे ही हमारी मनसा पावर काम करे कि मैंने स्मृति का स्विच ऑन किया, यानी बाबा से मैंने कनेक्शन जोड़ा, और वो कनेक्शन जुड़ते ही सर्व शक्तियां, शांति का अनुभव, जो वाइब्रेशन हम फैलाना चाहते हैं पूरे विश्व की आत्माओं के लिए, जो सकाश हम देना चाहते हैं वो दे पाए। तो इस अभ्यास को हमें रिफाइन बनाना है। अभी तक मन अपनी ही उलझनों में रहता है। बाबा कहता है छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि बहुत एंगेज रहते हैं, तो हम खुद ही शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, खुद ही शक्ति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो फिर विश्व की आत्माओं के लिए वाइब्रेशंस कैसे फैलाएंगे? जब हमारे पास खुद ही नहीं है, भले हम बाबा को याद करते हैं, लेकिन मन की स्थिति क्या मेरी शांत स्वरूप की स्थिति है, या परिस्थितियां मेरे मन की शांति को समाप्त कर देती हैं, मेरे मन को शांत से परेशान कर देती हैं, या हम खुद ही छोटी छोटी बातों में मूंझ जाते हैं। और इसके लिए चाहिए रोज ज्ञान का मनन चिंतन। जब तक मनन चिंतन नहीं है, तब तक मन उतना शक्तिशाली नहीं होता। मन की शक्तियों की लीकेज होती रहती है, और वही बात बाबा ने आज मुरली में भी कही कि मुरली से प्यार होना चाहिए। और अगर मुरली से प्यार है तो ऐसी आत्मा के सामने कोई विघ्न ठहर नहीं सकता, वो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। तो तो हम मुरली सुनते हैं जरूर, बाबा की मुरली बहुत प्यार से सुनते हैं हम सभी ब्राह्मण आजकल। चलो कई बार सेवा केंद्र पर रोज नहीं आ सकते हैं, तो बहुत साधन है, पीएम टीवी में भी मुरली आती है, वहां से सुन लेते हैं, या आजकल मोबाइल में भी मुरली मिल जाती है, वहां से भी सुन लेते हैं, वहां भी ऑडियो सिस्टम होता है जिससे मुरली सुन सकते हैं। लेकिन वातावरण की बात जो बाबा ने आज मुरली में कही कि घर का वातावरण वैसा नहीं होता है कि वो मुरली आपके अंदर समा जाए। अगर वो मुरली मेरे में समाए, उसके लिए हमें सेवा केंद्र पर, उस स्थान पर जिस स्थान पर वो वाइब्रेशंस हैं, वहां सुनते हैं, तो वो हमें ज्यादा याद रहेगी। वैसे भी कम याद रहती है, एक बार मुरली सुनी तो पूरी याद कभी भी नहीं रहेगी, एक पॉइंट दो पॉइंट हमें याद रहेगी। तो अगर हमें उसका मनन चिंतन करना है तो दोबारा रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो चाहे हम आपस में मिलकर रिवाइज करें उसको, चाहे हम अपनी कोई विधि अपनाएं कि डायरी में उसके पॉइंट्स मैंने नोट किए और फिर मैं उसको पढ़ लेती हूं, या नहीं तो मोबाइल में मेरे पास ऐसा साधन है, तो हर घंटे में बीच बीच में हम मुरली के वो पॉइंट्स रिवाइज करेंगे, तो जो व्यर्थ संकल्प बीच बीच में किसी भी कारण से आ जाते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के संबंध में आ जाते हैं, चाहे वो कोई बात की चिंता को लेकर के आ जाते हैं, कई समस्याएं होती हैं जीवन में, वो मेरे मन में चिंता पैदा करती हैं, तो फिर बाबा की बात मुझे याद आई और मुझे समाधान मिल जाता है कि मुझे ये नहीं सोचना है, ये सोचना है, बाबा ने ऐसा कहा है, ज्ञान ऐसा कहता है, तो व्यर्थ समाप्त होगा और मन की शक्ति बढ़ेगी। जब मन शक्तिशाली होगा तब हम अपने आप को शांति की स्थिति में, सुख की स्थिति में, पवित्रता की स्थिति में रख पाएंगे और तभी हम वो वाइब्रेशंस भी फैला पाएंगे जो बाबा हमसे चाहता है। और बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छे से ये समझाया था कि अगर हम ये वाइब्रेशंस फैलाते हैं विश्व की आत्माओं को, कहीं भी संसार के किसी भी कोने में वो आत्मा हो, उस आत्मा को हम शांति का अनुभव करा सकते हैं, शक्ति का अनुभव करा सकते हैं, यहां तक कि साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाबा ने कहा ओम मंडली जब शुरू हुई थी उस समय की जो सेवा थी वो साक्षात्कार की सेवा थी, ज्ञान किसी को भी नहीं था, लेकिन घर बैठे हुए क्या देखा, ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते रूप का साक्षात्कार होता था और उनको प्रेरणा मिलती थी यहां जाओ, तो वो लाइट माइट हाउस की जो स्थिति है वो आत्माओं को ऐसा अनुभव कराएगी। तो आप किसी को भी घर बैठे बाबा का संदेश सूक्ष्म रीति से भी दे सकते हो, उसको टच होगा कि कोई मुझे प्रेरणा दे रहा है, कोई मुझे हिम्मत दे रहा है, कोई मुझे उत्साह दे रहा है। और बाबा ने कहा यहां तक कि आप अपने लिए भी साइलेंस पावर यूज कर सकते हो, सकाश का यूज कर सकते हो, मानो मुझे तन की कोई व्याधि है। आज का समय ऐसा समय है कि किसी को कोई तन की बीमारी ना हो, होता ही नहीं है, कहते हैं अस्पताल बढ़ते जाते हैं, डॉक्टर बढ़ते जाते हैं और साथ साथ बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। तो समय ऐसा होगा कि लोग बीमारियों से, दवाइयों से, अस्पताल से तंग होते जाएंगे और किस और आते हैं, दुआ, कोई हमें दुआ कर दे, जैसे लोग जाते हैं ना रिद्धि सिद्धि वालों के पास जाते हैं कि वो हमारे लिए कुछ ऐसा कर देंगे कि हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो बाबा ने कहा आपकी पवित्रता की शक्ति भी इतनी पावरफुल है कि आप यदि अपनी बीमारी के ऊपर वो प्रयोग करते हैं तो खुद को भी स्वस्थ कर सकते हैं और अन्य आत्माओं को भी आप स्वस्थ करने में सहयोग दे सकते हो। और अगर आपने प्रयोग किया तो वो कर्म भोग, कर्म योग में बदल जाता है पानी की लकीर के मिसल अनुभव होगा। यानी बीमारी कई बार असाध्य हो सकती है, आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं कई बार ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं बस, कई बार समय भी बता देते हैं मानो। तो बाबा ने कहा कितना भी दुख अनुभव कराने वाली बीमारी होगी, लेकिन अगर आपकी अशरीरी स्थिति है, आपके अंदर वो साइलेंस पावर है, तो वो बीमारी का दुख दर्द आपको अनुभव नहीं होगा। हाँ, देखने वाले को लगेगा देखो कितनी बड़ी बीमारी, कितनी पीड़ा होगी इसको, लेकिन सचमुच वो पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। हमने अपनी दादियों को देखा है कितनी बार महारथी भाई बहनों के सामने, तो कई बार परीक्षाएं भी महारथी रूप में ही आती है ना। बाबा कहते हैं रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है, ऐसे कई बार बाबा कहते हैं, वो परीक्षाएं भी उसी रूप में आती हैं। तो मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं दादी प्रकाशमणि जी के साथ रही हूं काफी समय तक, और मैंने उनको देखा है कैसा भी उनके सामने बीमारी का स्वरूप रहा, लेकिन कभी भी दादी को दर्द का अनुभव हो, दुख का अनुभव हो, पीड़ा का अनुभव हो, वो स्वरूप रहा ही नहीं, तो वो अनुभूति नहीं होती। अशरीरी स्थिति को बाबा कहता है वो इंजेक्शन जैसा काम करती है, जैसे साइंस में इंजेक्शन होते हैं, एक सेकंड में इंजेक्शन लगाते हैं और दर्द खत्म, पावर है ना उसके अंदर, इंजेक्शन के अंदर पावर है कि इंजेक्शन लगा तो दर्द समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही अशरीरी स्थिति का अगर हमें अभ्यास है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास है, तो वो स्थिति भी हमारे कर्म भोग के लिए ऐसा काम करती है कि हम सूली से कांटा उसे अनुभव करते हैं। सूली जैसा दर्द होगा लेकिन अनुभव कैसा होगा, बिल्कुल कांटे जैसा। और अगर किसी दूसरी आत्मा को मैं सहयोग देना चाहती, मुझे लगता है वो बहुत पीड़ा में, जैसे हम लोग योग लगाते भी हैं, अभी भी मैंने सुना कि ओम प्रकाश भाई जी हैं, उनके स्वास्थ्य काफी कमजोर हैं, तो मैं अभी उनसे मिलने के लिए गई थी, तो बहन जी मुझे सुना रही थी कि भाई बहने उनके लिए योग लगा रहे हैं ना। तो हम सहयोग देते हैं, बाबा हमें कहता है कहीं भी, ये तो चलो हमारा अपना परिवार है, लेकिन विश्व में भी कहीं भी ऐसी आपदा आती है, मानो जैसे कहां भूकंप आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, बहुत लोग मर जाते हैं, कोई ऐसी घटना होती है संसार में, तो भी हमारा कर्तव्य उस समय होता है कि हम अपने वाइब्रेशंस के द्वारा उन आत्माओं को सहयोग दें। जो आत्माएं उस समय अशांत परेशान हैं, अगर हम उस तरह से योग अभ्यास करते हैं तो उनको सहयोग मिलता है। तो हम किसी भी आत्मा को वो सहयोग दे सकते हैं, ये अभ्यास वर्तमान समय हमें बढ़ाते जाना है, ये हमारा विशेष पुरुषार्थ होना चाहिए, जो आज की मुरली में बाबा ने हमें अंडरलाइन कराया। तो मैं विशेष, मेरा जो आज की मुरली पर चिंतन चला उसके विषय में मैंने आपके साथ शेयर किया, और मैं अभी इसको यहीं समाप्त करती हूँ। ओम शांति।
साथी है कद कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। राह दिखा कर जाती है भरते हुए ना।